ગ્રંથ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ છે, અધ્યાય છે, ઓર શ્લોક નંબર હે 16. ઓર ઇસ અધ્યાય કા નામ હૈ દેવતાઓ તથા વૃત્રાસુર કા યુદ્ધ. સર્વપ્રથમ શ્રોતા ભક્તો કે ચરણો મેં પ્રણામ કરતે હુએ, રાધિકા રમણજી કે ચરણો મેં પ્રણામ કરતે હુએ, અમલ પુરાણ શ્રીમદ ભાગવતમ ગ્રંથ કે વિષય મેં કુછ સુનને સમજને ઓર કુછ કહેને કી શક્તિ કી આશા રખતે હુએ શ્રીમદ ભાગવત કા પાઠ કરને કા પ્રયાસ કિયા જા રહા હૈ. પ્રસંગ બહુત હી સુંદર પ્રસંગ ચલ રહા હૈ ભાગવતમ મેં. એસે તો કોઈ એસા કોઈ પ્રસંગ નહીં હૈ કે જિસકો કહા જાય કે અચ્છા નહીં હૈ. ઇસલિયે ભાગવત ગ્રંથ કો અમલ પુરાણ કહા ગયા, જિસકે અંદર મલ નહીં હૈ, ગંદગી નહીં હૈ. અબ પ્રસંગ વહાં પહોંચા હુઆ હૈ જો પ્રતિદિન ભક્ત શ્રીમદ ભાગવતમ કે ક્લાસ મેં આતે હૈ વો સુન ચુકે હૈ કે દધીચિ ઋષિ ભગવાન કે આદેશાનુસાર ઓર દેવતાઓ કે ઉનકે પાસ ભેજ ચુકે હૈ ઓર દધીચિ ઋષિ તૈયાર હોકર કે અપને મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય સબકો ભગવાન મેં તલ્લીન કરકે અપને શારીરિક ધરાતલ સે અપને આપ કો ઉપર ઉઠા ચુકે હૈ ઓર ઉનકો યહ ભી ભાસ નહીં હો રહા હૈ કે હમારે શરીર સે પ્રાણ નિકલ ચુકા હૈ. યહ હૈ શરીર ત્યાગને કી વિધિ, યહ હૈ મરને કી તૈયારી. શ્રીમદ ભાગવતમ કે પ્રથમ સ્કંદ મેં હી રાજા પરીક્ષિત કે જીવન ચરિત્ર સે યહ શિક્ષા લિયા જા સકતા હૈ કે શ્રીમદ ભાગવતમ કા શ્રવણ કરતે કરતે રાજા પરીક્ષિત પૂરી ભાગવત જબ સુન લીએ સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ કે મુખ સે તો ઉન્હોને અપને એસે મન કો ભગવાન ભક્તિ કે અંદર તલ્લીન કર ચુકે, ઉનકા મન, ઉનકા ચિત્ત, ઉનકી સારી ઇન્દ્રિયા ભગવાન મેં ઇતની તલ્લીન હો ચુકી થી કે તક્ષક નાક ઉસ શારીરિક ધરાતલ સે અપને આપ કો પરીક્ષિત મહારાજ ઉપર ઉઠા ચુકે થે, ઉસ સ્થિતિ મેં उनके मरे हुए शरीर को अर्थात जिस शरीर से परीक्षित महाराज का जो प्राण था वो निकल चुका था, मरे हुए शरीर को आकर के तक्षक काटा. शुरू से लास्ट तक भक्तों को भक्ति में कैसे एक निष्ठता होनी चाहिए यह शिक्षा दी गई है. और इस प्रकार की ट्रेनिंग लेने के लिए ही भागवत को सुनने की जरूरत है. जिस व्यक्ति की कृपा से इस प्रकार की भाव हमारे अंदर उपज हो सकती है उसी ग्रंथ को अपने कंठाहार बनाने की जरूरत है. अब प्रसंग पर आइए कि दधीचि ऋषि ऐसे યોગી હૈ, એસે ઋષિ હૈ કે વો અપને શરીર કી બલિ દે કરકે વો દૂસરે કે પરોપકાર હેતુ અપને શરીર કો ન્યોછાવર કર દિયા હૈ. અબ ઇસ પ્રકાર કે મહાનુભાવ કે શિક્ષા સે જીવન ચરિત્રી સે હમે અપને ઇન આસક્તિઓ કો તો જરૂર છોડને કી भावना एक बार मन में आती है कि यह शरीर बेकार है, जिससे किसी की परोपकार न की जाए। भागवत के 8वें स्कंध जिसमें बलि महाराज का प्रसंग है, भागवत का 10वां स्कंध 72 अध्याय जिसके अंदर यह भी व्याख्या है कि अन्य ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने इस शरीर की कोई परवाह न करके किसी दूसरे की भलाई की है। तो अपने भी इस मरणासन शरीर से यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि इतने विमोह में हमें लोग पड़े हुए हैं, विशेष मोह के अंदर इस शरीर में बंधे हुए हैं, तो इसको हमें कहां लगाना है, इससे हमें क्या करना है। भागवत में 6 प्रश्न हैं, जिन 6 प्रश्नों का उत्तर देने में सुखदेव गोस्वामी 12 स्कंद तक बोल गए, उसमें यह भी एक प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा है कि जो मरणासन व्यक्ति है, जो जल्दी मरने वाला है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज है। अब सोच लीजिए कि हम लोग भी मरने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए क्या जरूरी चीज है। इसी को तैयारी करने के लिए इस प्रकार की विधि है भागवतम के अंदर, सुनने की विधि। श्रवणे परीक्षित, कीर्तने सुखदेव गोस्वामी, जो नवधा भक्ति के नव आचार्य हैं, सबसे शक्तिशाली साधन भक्ति का बताया गया है श्रवण। इसलिए सुनेंगे तो वैसा भाव आएगा, हमें श्रोता बनना है, श्रोता नहीं बनना है। बहुत प्रकार की बातें हैं भागवतम के अंदर। सुनने के लिए मेरे गुरु महाराज तो कहा करते हैं कि अगर भागवत सुनने के लिए अगर बैठो तो इस बात को भूल जाइए कि अपने अलावा और कोई हमारा संबंधी नहीं है, सब मर चुके हैं, कोई हमारा नहीं है, हम हैं और हमारे भगवान हैं। अगर उस भाव से भागवत की कथा सुनने में एक चित होकर के हम सुनते हैं तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्लोक की आवृत्ति एक दो लोग करेंगे, उसके बाद हम ये प्रसंग क्या कह रहा है उससे जो ग्रहणीय विषय है उसके विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे श्लोक नंबर 13, 14 और 15 3 श्लोक हैं जिनके अंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, तो उन श्लोकों के अनुवाद को हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद इस श्लोक को बोलने का प्रयास कीजिएगा। श्लोक नंबर 13 का, 13 और 14 का हम अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीची मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चले तो अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोकों को अच्छा लग रहा था। जब इंद्र दधीची ऋषि के शरीर से बने हुए वज्र को प्राप्त कर लिए, धनुष को प्राप्त कर लिए, तो सज करके हाथी पर सवार होकर के ऐरावत के ऊपर बैठ करके और देवताओं से युद्ध करने, अरे असुरों से युद्ध करने के लिए, वृत्रासुर से लड़ने के लिए चल देते हैं। श्लोक नंबर 15, हे राजा परीक्षित, जिस तरह रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर अत्यंत अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से गिरे हुए वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। अब इनकी शक्ति बढ़ी हुई है इंद्र की। भागवत का 8वां स्कंद अगर पढ़ेंगे बलि प्रसंग में तो देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा था कि क्या कारण है कि अभी असुरों की शक्ति इतनी बढ़ी हुई है, क्योंकि देवता लोग बहुत बार असुरों को हरा चुके थे। तो बृहस्पति जी से, अपने गुरु महाराज से देवताओं ने प्रश्न किया कि अब ऐसी कौन सी बात आ गई है, इतनी बड़ी शक्ति की प्राप्ति हो गई है, कौन से ऐसे बड़े सेवा कर दिए हैं लोगों ने कि इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है। तो बृहस्पति जी उन लोगों को बताए हैं वहां कि देखो, इन लोगों ने अपने गुरु को प्रसन्न करके, शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करके असुरों ने वर प्राप्त कर लिया है, और गुरु की शक्ति के कारण इनके बल की वृद्धि हुई है, क्योंकि गुरु सर्वसमर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है। आप सोचो, गुरु भगवान को दे सकता है तो और कोई चीज बाकी रह कहां जाती है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि गुरु सब कुछ दे सकता है, अब इंद्र चढ़ाई कर रहे हैं असुर वृत्रासुर के ऊपर। अब प्रसंग जिसको हम लोगों को पढ़ना है, जो श्लोक उसको उच्चारण करेंगे। ततः सुराणाम असुरै रणः परमदारुणः त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत् प्रथमे युगे। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय की। ततः सुराणाम असुरै रणः परमदारुणः त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत् प्रथमे युगे। ततः सुराणाम असुरै रणः परमदारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत् प्रथमे युगे। ततः तदंतर सुराणाम देवताओं का असुरई असुरों के साथ रणह महान युद्ध, परमदानुणह अत्यंत भयानक, त्रेता मुखे त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदायाम नर्मदा नदी के तट पर अभवत् हुआ, प्रथमे प्रथम युगे युग में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अब कोई अगर आप लोगों से पूछे कि देवसुर संग्राम कब हुआ था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि त्रेता युग के प्रारंभ में यह देवासुर संग्राम हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नर्मदायाम तटे, नर्मदा नदी के तट पर। एक ही बार में गुरु प्रणति को हम लोग प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाते हैं, टाइम अपने गति से बढ़ रहा है। श्रील प्रभुपाद महाराज की। अब वृत्रासुर और इंद्र दोनों आमने सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। वास्तव में अपने चित्त को वहां ले जाना चाहिए जहां ये दोनों इकट्ठे हुए हैं। अपने चित्त रूपी वीडियो से उसको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत है अपने हृदय के अंदर, कि अब युद्ध करने की तैयारी है पूरी तरह, शक्ति प्राप्त हो चुकी है इंद्र को और इंद्र को शक्ति मिलने के बाद भी अन्य पुराणों में एक जगह यह बात संकेत की गई है कि प्रथम बार वृत्रासुर प्रहार किए उस वज्र से और अपने गदा से, पहले गदा से प्रहार किए वृत्रासुर के ऊपर, तो उनकी गदा असफल चली गई, नहीं मार पाए। इंद्र उदासीन हो गए कि पता नहीं, जैसे मैंने गदा से वार किया मेरी गदा निष्फल गई, तो क्या भरोसा है कि इस वज्र रूपी आयुध को भी अगर हम चलाएं तो वो मर जाएगा, वृत्रासुर मरेगा। लेकिन कन्फर्म करते हैं अपने तरफ से वृत्रासुर जी कि हे इंद्र, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और भगवान ने तुम्हें मेरे मरने की स्थिति को बता चुके हैं और दधीचि ऋषि के हड्डी से वज्र तुमको प्राप्त हो चुका है। तुम उस वज्र को मेरे ऊपर छोड़ो, सुरेश कस्मान हिना प्रयोजिता, कि अब निराश मत हो कि जैसे तुम्हारी गदा निष्फल गई वैसे वज्र भी निष्फल जाएगा। अब मारो, वज्र छोड़ो। जैसे इंद्र मारने के लिए उतावले हुए हैं वैसे वृत्रासुर मरने के लिए उतावले हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान की योजना है। भगवान ने प्रकट होकर के साक्षात आदेश दिया है कि इनके पास जाओ, इनके हड्डी से वज्र बनाओ और उसी से हम मरेंगे। तो ये भगवान के आदेश को सोचते हुए वृत्रासुर जी भी मरने के लिए व्याकुल हैं कि मारो। आप सोचो, हम लोग अपने को बचाने के लिए कितना प्रयास करते हैं और भक्त भगवान के आदेश को देखते हुए मरने के लिए कितने उतावले हैं। वो जानते थे कि भगवान के आदेश का मैं पालन कर रहा हूं और मरेंगे तो ऐसा शरीर प्राप्त होने वाला है जो एक शुद्ध भक्त के रूप में जाना जाएगा। आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे आप लोग, 11वें अध्याय के अंदर वृत्रासुर का प्रसंग आएगा जिसके अंदर इन्होंने स्तुति किया है। ऐसे वो श्लोक हैं कि जो रसिक जन हैं उस श्लोक को गा गा करके अकेले में रोते रहते हैं, ऐसी उस श्लोक की गुह्य रहस्य है। इसलिए जैसे चतुश्लोकी भागवत है, भगवान ने ब्रह्मा को चार श्लोक में पूरे भागवत दे दिया था, सुना दिया था, वैसे ही चार श्लोक 11वें अध्याय के अंदर आएंगे जिसको चतुश्लोकी वृत्रासुर श्लोक के रूप में जाना जाता है। सारे भगवान के दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए और प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने भगवान को देखते हुए वृत्रासुर जी स्तुति किए हैं। आप सोचो, इधर मरने के लिए तैयार हैं और वहां साक्षात्कार भगवान का करते हुए उन्होंने स्तुति किया। अब बात यह रही कि हमें अब कहां से यह शिक्षा मिले कि हम लोग इस शरीर को इस स्थिति में त्यागने के लिए तैयार करें, ये भाव कैसे आएगा। भागवत में बहुत जगह ऐसे उदाहरण हैं, दूसरे ग्रंथों के उदाहरण की जरूरत नहीं है, भागवत में सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। 8वां स्कंद पढ़ेंगे बलि महाराज का प्रसंग, तो शुक्राचार्य जी से बलि महाराज स्वयं कहते हैं, जब बलि महाराज समर्पण कर चुके कि मैं 3 पग 52 भगवान को दूंगा, तो शुक्राचार्य जी पहुंचते हैं और मना करते हैं कि नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए क्योंकि गुरु को, जो तथाकथित गुरु हैं, उनको कुछ आशा रहती है कि शिष्य के पास कुछ रहेगा तभी तो गुरु का यथोचित सत्कार करेगा। शुक्राचार्य जी मना किए, लेकिन बलि महाराज अब सोचिए कि गुरु को कहने के बाद जो असली तत्व था शास्त्र का, वो वाक्य अपने गुरु से बलि महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसे मैं बहुत लोगों के विषय में सुन चुका हूं कि जिन लोगों ने अपने शरीर की बलि देकर इस शरीर का परवाह नहीं किए बिना उन्होंने ध्रुवम गति को प्राप्त किया, इसलिए मैं ऐसा सुना हूं तो भाव मेरे अंदर है कि मैं जब देने के लिए मैं वचन दे चुका हूं कि मैं 3 पग भूमि दूंगा तो मैं अपने वचन को वापस नहीं लेना चाहता। उसमें उदाहरण दिए हैं बलि महाराज कि श्रेय कुर्वंत भूतानाम साधवो दुस्त त्यजांग भी दध्यंग शिवी प्रभृतय को विकल्पो धरादिशु। कि हे गुरुदेव, श्रेय कुर्वंत भूतानाम, जो साधु पुरुष होते हैं, जो भले आदमी होते हैं, वो इस शरीर को प्राप्त इसलिए करते हैं कि श्रेय किसी दूसरे की भलाई करें, अपने शरीर के रक्षा के लिए, यह नहीं कि दूसरे बकरे और मुर्गों को काट करके मांस बढ़ाए इस शरीर का। इस भाव को तो कभी लाना नहीं चाहिए मन के अंदर। उदाहरण देते हैं कि श्रेय कुर्वंत भूतानाम साधवो दुष्ट साधवो दस्तजांग भी, जिन लोगों ने जिस शरीर से कोई भी प्रेम नहीं किया, किस लिए? कि दूसरे की भलाई के लिए, परवाह ही नहीं किया। इसलिए मैं अपने धन का वचन दे चुका हूं कि मैं दूंगा भगवान को, तो मैं फिर क्यों मुकरूं? सबई भूमि गोपाल की, सब कुछ उनका है, अगर दे भी दिया वो भी तीन कदम, तो हमारा क्या बिगड़ेगा? उदाहरण देते हैं, राजा बलि, दद्यं शिवि प्रभीतज को विकल्पो धरा दिशु, दो उदाहरण दिए हैं दधीचि ऋषि का, कि वही दधीचि ऋषि हैं जिन्होंने इस शरीर की कोई परवाह नहीं किया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर को दे दिया और इस शरीर से वज्र, इस शरीर की हड्डी से वज्र बना और देवता लोग जीते और इंद्र अपने राज्य को प्राप्त किए और असुर लोग हारे, वृत्रासुर का वध हुआ। दूसरा उदाहरण देते हैं राजा शिवि, कि ऐसे राजा शिवि थे कि जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को काट काट करके बदले में तौल लिया कि इस कबूतर को मत ले जाओ, इस मांस को ले जाओ। बताइए इस शरीर की क्या वैल्यू है? अगर इससे भजन न किया जाए, भक्ति न किया जाए, तो इसकी सार्थकता कहां है? जीवन का 100 वर्ष में 85 वर्ष बीत जाता है इस शरीर को संवारने में, इसकी रक्षा करने में, इसको पोषण करने में, तिहाई हिस्सा, उससे भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में क्या उससे मिलता है? दुख ही दुख मिलता है और कुछ नहीं। जिनको हमने पैदा किया, जिसको हमने बढ़ाया, जिसके पीछे हम दीवाने थे, सबने हमारे पीछे बंधन उत्पन्न किया, हमें जबरदस्ती नरक में ढकेला। वैसे शरीर को धिक्कार है जिस शरीर से भगवान की भक्ति न की जाए। दूसरा उदाहरण भागवतम के अंदर लीजिए, जिन लोगों ने असुर योनि में भी थे, आसुरी स्वभाव वाले थे, लेकिन उन लोगों ने भी अपने शरीर का परवाह नहीं किया। भागवत का दशम स्कंद 72 अध्याय का 20वां श्लोक पढ़िए, प्रसंग इस प्रकार का है कि भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास जाते हैं, आयुध मांगने के लिए, क्योंकि भीम का और जरासंध का युद्ध देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो हारने के पोजीशन में नहीं था जरासंध, तो भेष बना करके ब्राह्मण का ये तीनों गए और वहां भिखारी बन करके कुछ मांगने के लिए गए, तो वहां प्रशंसा करते हैं भगवान, बोलते हैं पहले कि ऐसे बहुत महापुरुष हुए कि जिन लोगों ने ये शरीर मांगने की तो बात छोड़ दीजिए, अपना सब कुछ किसी दूसरे के सेवा में लगा दिया, इसलिए हम लोग याचक बनकर के आपके पास आए हैं। तो जहां तक हमारी आशा यह है कि आप मुंह करेंगे नहीं, जरूर देंगे, जो हम लोग मांगेंगे जरूर देंगे। तो उस प्रसंग में कि यो अनितेन शरीरेण, भगवान कहते हैं कि हे जरासन, यह जो व्यक्ति अनित्येन, जो यह शरीर नित्य नहीं है, अनित्येन मतलब नाशवान है, उस शरीर से सताम गेयम जसम ध्रुवम, सत्यता को प्राप्त नहीं कर लेता है, अपने ध्रुव अचल पद को प्राप्त नहीं कर लेता है, तो उसकी शरीर की फलश्रुति की पूर्ति नहीं होती है। ना चिनोति स्वयं कल्प, शरीर का जो फल है भगवान को प्राप्त करना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे को कृष्ण सेवा में लगा देना, अगर ऐसा नहीं किया शरीर प्राप्त करने के बाद, तो उसको जस नहीं मिलने वाला है, उसके पीछे और आगे गाली ही पड़ने वाली है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद ऐसे काम करना चाहिए कि सामने भी और हमारे आड़ में भी कोई हमें गाली ना देने पाए। लेकिन हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। अब सोचो कि मांगने के लिए भगवान यहां गए हैं भीम और अर्जुन को लेकर के, और मांगते हैं जरासंध से, और मांगने से पहले प्रशंसा कर रहे हैं कि भैया ये अनित्य शरीर है, इससे कुछ प्राप्त कर लो। उसके बाद उसी अध्याय के अंदर और उदाहरण दिया हुआ है कि हरिश्चंद्रो रंति देवम उच्छवृत्ति शिविर वली व्याध कपोतो बहव ह्री ध्रुवेणम ध्रुवम गतिम। ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए जिन लोगों ने इस अध्रुव शरीर को दे करके ध्रुव पद को प्राप्त किया। उदाहरण देते हैं हरिश्चंद्रो, राजा हरिश्चंद्र, दानियों में महादानी, सूर्य तरे जगत तरे, तरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ हरिश्चंद्र का तरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र। दूसरा उदाहरण देते हैं रंती देव, 48 दिन उन्होंने व्रत किया, उस समय भी खाने की जब स्थिति आई तो खा नहीं पाए, किसी दूसरे को दे दिया। तीसरा व्यक्ति का नाम रख रहे हैं उच्छवृत्ति शिवी, एक राजा और हुए जो उच्छवृत्ति का अर्थ है कि जो खेत में अन्न गिर जाता है अपने आप, उसको इकट्ठा करके उससे अपना शरीर पालन करते थे, लेकिन उन्होंने इस शरीर की कोई परवाह नहीं किया, दूसरे की भलाई के लिए उन्होंने इस शरीर को दे दिया। और राजा बलि का तो आप लोगों की कथा सुने ही हैं कि जब आत्मसमर्पण कर चुके भगवान को, वामन देव को, और भगवान वामन देव दो कदम में सारा कुछ माप लिया, तो भगवान पूछते हैं कि बड़े तू दानी बन रहा था ना, अब बता मैं तीसरा कदम कहां रखूं। तो बलि महाराज भी कम नहीं थे, भगवान को बड़े सुस्वर में उन्होंने उत्तर दिया कि हे आराध्य देव, आपने गीता में कहा है कि यह शरीर भी क्षेत्र है, अभी तो आप इस पृथ्वी को और स्वर्ग की सारी चीज को मापे ना, अभी यह शरीर बचा हुआ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आपने ही गीता में कहा है, तो अभी ये शरीर रूपी क्षेत्र बचा हुआ है, कृपा करके इसको माप लीजिए। कितनी आत्मसमर्पण की भावना है भगवान इतना सुने और बलि महाराज के सर पे अपना पांव रखे। बलि महाराज सुतल लोक को गए। आज भी भगवान वहां सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं उनके दरवाजे पे। जब भक्त भगवान के लिए कोई बाकी नहीं छोड़ता तो भगवान कौन सा कसर छोड़ेंगे। भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि साधवो हृदयम त्वहम, साधवो हृदयम त्वहम, साधवो हृदयम मह्यम, साधवो हृदयम त्वहम, मद्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु में और भगवान में ऐसा संबंध है कि जो कभी टूटने वाला नहीं है। साधु अगर भगवान के लिए अपना शरीर दे सकता है तो भगवान उस भक्त के लिए सब कुछ दे सकता है। और यह अनुन्याश्रय संबंध है, कभी टूटने वाला नहीं है। कथा सुनने का आशय ही है कि हम कुछ रखें इसके अंदर, इस बर्तन में कुछ रखें। सारे संसार के कचड़ा भर रखे हैं जो इसके अंदर, इस हृदय रूपी कमंडलू को खाली करके भगवान के रूप को, भगवान की कथा को, भगवान के भक्तों को, भगवान के प्रेम को रखने का प्रयास करें। इसी से इस शरीर की फलश्रुति प्राप्त होगी, पूर्ण होगी। अगर कितना भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, विद्वता को हासिल करते हैं, अगर भगवान के विषय में कुछ नहीं जानकारी है तो श्रम ये वही केवलम, केवल परिश्रम बेकार जाता है। सुनो और उसको रखो। मेरे महाराज तो भोजपुरी में कहा करते हैं कि सुनो, गुनो, उसके बाद धुनो। पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद गुनो का मतलब उसके ऊपर विचार करो, और उसके बाद कहते हैं धुनो, मतलब किसी दूसरे को सुनाओ। सुनने का तात्पर्य यही है कि हम भगवान की स्थिति को समझ करके उनसे प्रेम करें। और यहां भक्त, भगवान और एक भक्त की स्थिति को, जो हृदय में भाव जो पका हुआ है, उसकी रिजल्ट को आप देख चुके हैं कि कब इस शरीर से प्राण निकला वो भी पता नहीं चला। नहीं तो मरने में, मरते समय केवल जब नजदीक समय आ जाता है तो जमराज के दूत जैसे नजदीक आते हैं तो डर के मारे उनके भयानक स्वरूप को देख करके आदमी बेड पर ही मलमूत्र त्याग देता है, इतने भयानक होते हैं। लेकिन भक्त को मरने की स्थिति देखिए, शरीर छोड़ने की स्थिति, भक्त तो कभी मरते ही नहीं। वास्तविक शास्त्र में अगर निचोड़ कहा गया तो भक्त तो कभी मरते ही नहीं। वो कपड़े बदलते हैं, इस शरीर को बदलते हैं। इसलिए इन सब चीजों को, इन विषयों को ऐसे ढंग से सजा करके रखना है हृदय के अंदर कि ये भगवान चाहे जिस स्थिति में मैं जहां भी हूं लेकिन आपसे दूर न रहूं। जब भगवान के विषय में कुछ गाएंगे, सुनेंगे, उनके विषय में कुछ सोचेंगे तब हम कुछ पाएंगे। प्रभुपाद जी दशम स्कंद के जो कृष्ण बुक लिखे हैं उसके अंदर एक जगह लिखते हैं कि एक जगह छोड़ो, एक तरफ छोड़ो और दूसरे तरफ पाओ। अगर कुछ पाना है तो एक तरफ छोड़ना पड़ेगा, बिना छोड़े मिलता नहीं। उदाहरण दिया हुआ है दशम स्कंद में कि जैसे एक जोंक जल जीव होता है जो पृथ्वी पर चलती है चाहे कहीं भी चलती है, अगर किसी घास के सहारे तो पहले आगे वाले अपने शरीर के भाग से घास को पकड़ लेती है, तब पीछे जो पकड़ी रहती है उसको छोड़ती है। तो हम अपने पीछे के आश्रित लोगों को जब तक छोड़ करके भगवान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब यह है कि उनको एक रास्ता दिखा करके, भक्ति पथ की शिक्षा दे करके, स्वयं को दृढ़ता के साथ लग जाना है, तब कुछ मिल पाएगा। ऐसे हम लोग खिचड़ी भक्ति जो कर रहे हैं, गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास, इससे क्या मिलेगा? इनके पीछे उनके पीछे घूमने से क्या मिलेगा? प्रार्थना करो प्रभुपाद से आने के बाद, प्रभुपाद मुझे यहां आश्रय दीजिए, और आश्रय देने के बाद आप कृपा करो कि हम भगवान को समझ पाएं, भक्त को समझ पाएं, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है। कल के श्लोक में आप लोग देखिए कि जब तक सारी इंद्रियां एक लाइन में नहीं हो जाती हैं तब तक हम शरीर के धरातल से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हम इस शरीर की स्थिति को नहीं भूल पाएंगे जब तक मन क्रम वचन सारा कुछ एक लाइन में नहीं हो जाता, तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, नहीं तो कितना भी हम रूटीन पूरा करते रहेंगे, कॉपी मेंटेन करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रतिदिन प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त से जरूर प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभुपाद, जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपने इस संघ की स्थापना किया, उस संघ में हम आकर के हम अपने जीवन शैली को बदल करके हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकें, और प्रभुपाद देने में समर्थ हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हैं कि वो दे सकते हैं, लेकिन कहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, अन्यथा आना और जाना इस प्रकार से कुछ नहीं। यहां आओ तो कुछ लेकर जाओ। यह ऐसा दरबार है कि गेट से घुसते ही सब कुछ मिल जाता है, अगर लेने की इरादा रखते हो तो। उस भाव से आओ, आए हैं तो किसके लिए आए, क्या करने के लिए आए, इस बिंदु पर विचार करके तब यहां आना, और यहां से उसी चीज को लेकर जाना। राधिका रमण जी का दर्शन करने के लिए कहां कहां से आप लोग आते हैं, तो उनको साथ में लेकर के जाइए ना, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। भगवान कैसे सजे हैं, भगवान किस मूड में हैं, भगवान क्या करते हैं, कहां रहते हैं, इन पर विचार कीजिए ना। और प्रभुपाद इस श्लोक के संदर्भ में जो तात्पर्य लिखे हैं कि कब युद्ध हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में वो दो चार लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये श्लोक का भावार्थ या इस अध्याय का सारांश यह है कि शरीर प्राप्ति का मूल उद्देश्य यही है कि शरीर को भगवान को खुश करने के लिए तपा सकते हैं। आचार्यों ने लिखा है कि जो हम लोग व्रत करते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, या एकादशी जितने भी वैष्णव व्रत हैं इसलिए हम लोग करते हैं कि गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जितना इस शरीर को तपाएंगे उतनी ही अच्छी वस्तु हमें मिलेगी और सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे जुगल राज श्री श्री राधिका रमण जी मिलेंगे। जरूर अपने आंखों को उनके चरणों में गड़ा करके उनके चरणों का कुत्ता बन करके वहीं बांध दो उसको। तब हम इस शरीर की वृत्ति से अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। अब इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। लेकिन दधीचि ऋषि के नाम से नाम सुनते ही इस भाव को जरूर रखिएगा कि हे भगवान ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने शरीर की परवाह किए बिना आपके वचन को माने हैं तो वो भाव मेरे अंदर भी आ सके। नाम सुनते ही जरूर भगवान से प्रार्थना करना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की कि यहां पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा नदी से नहीं है। भारत में पांच पवित्र नदियां हैं गंगा जमुना नर्मदा कावेरी तथा कृष्णा। ये सभी स्वर्गिक हैं। गंगा नदी की भांति नर्मदा भी स्वर्ग में बहती है और असुरों तथा देवों का संग्राम स्वर्ग लोक में ही हुआ था। प्रथमे युगे का अर्थ है कि प्रथम कल्प अर्थात युग के प्रारंभ में अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु होते हैं जिनमें से प्रत्येक 71 कल्प तक जीवित रहते हैं। 71 चतुर्युगी का मतलब है कि सतयुग त्रेता द्वापर और कली ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होता है और एक चतुर्युगी अर्थात एक चतुर्युग बीत जाता है ब्रह्मा के एक साल की अवधि में। और एक चतुर्युग के अंदर जो मनवंतरों की स्थिति बताई गई 14 मनु आते हैं और चले जाते हैं बीत जाते हैं। मनुओं के भी आयु के वर्णन प्रभुपाद ने बहुत जगह लिखा है। पंचम स्कंद के कई श्लोकों के तात्पर्य में उन्होंने सतयुग की आयु द्वापर की आयु कली की आयु त्रेता की आयु सब उन्होंने एक मनु की आयु सबकी गणना बताया। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वर्ष होते हैं कितने दिन बीत जाते हैं सारा कुछ उन्होंने भौगोलिक वर्णन किया है। उस अध्याय का प्रभुपाद ने तात्पर्य भी नाम भी रखा है भौगोलिक स्थितियां पंचम स्कंद में एक अध्याय है। चारों युग सत्रेता द्वापर तथा कली मिलकर एक कल्प बनते हैं। आजकल हम वैवस्वत मनु के मनवंतर में रह रहे हैं जिनका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है कि इवम विवस्ते योगम प्रोक्तवान हवव्यवन विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवि ब्रवीत। इस समय हम वैवस्वत मनु के 28वें कल्प में हैं किंतु यह युद्ध वैवस्वत मनु के प्रथम मनवंतर में हुआ अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गणना की जा सकती है कि युद्ध कब हुआ चूंकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है, अब तक 28 कल्प अर्थात लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं जब नर्मदा के तट पर यह युद्ध हुआ था। कहां से प्रभुपाद जी ढूंढ ढूंढ करके ये चीजें लिखे होंगे, कितना दिमाग लगाए होंगे, कितना पढ़े होंगे, तो ये सब चीजें हम लोगों को आज सुनने को इतनी आसानी से मिल जाती है। बनी बनाई चीज भी खाने में हम लोगों को आलस आता है। प्रभुपाद इतने परिश्रम करके ग्रंथ लिखे और उस कथा को सुनने में, उस कथा को पढ़ने में, उस किताब को पढ़ने में भी कोई रुचि नहीं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिस नाम को, जिस माला को हम लोग दिन भर हाथ में घुमाते रहते हैं, उस माला का भी अर्थ तभी समझ में आएगा जब हम कुछ पढ़ेंगे। भैया किसका नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, तभी समझ में आएगा। जब तक व्यक्ति विशेष के स्थिति को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तब तक उससे हम कैसे प्रेम करेंगे। पता नहीं ये छली है, कपटी है, क्या है, हम क्यों उसका नाम लें। जानने के बाद तो और प्रेम बढ़ जाता है कि नहीं, हमने सही व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाया है, सही जगह प्रभुपाद ने हम लोगों को पहुंचाया है। प्रभुपाद के ऋण से कभी हम लोग मुक्त नहीं होंगे, लेकिन ऋण उतारने का भी यही तरीका है कि उनके बनाए, उनके लिखे हुए पुस्तकों को पढ़ना, समझना और आचार्यों के अनुगमन पथ पर चलना, तब एक कथा समझ में आएगी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? अन्य पुराणों में कथा है, मेरे को पता नहीं, एक जगह मैं टीका में देखा हूं कथा है, कुछ शिव और उनकी यमराज के बीच में कुछ युद्ध हुआ है, उसका भी अपने अपने भक्तों के लिए दोनों लड़े हैं। पूरी डिटेल्स मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसका संकेत है। मैं आज देख रहा था इस श्लोक के विषय में कि शायद गीता गोरखपुर वाला भागवत जो है उसके अंदर किसी किसी श्लोक का टीका दिया रहता है, तो मैं देख रहा था उस अध्याय के अंदर कि नीचे इस श्लोक के विषय में कुछ टीका तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टीका नहीं लिखे तो क्योंकि आचार्यों ने या अन्य पुराणों में कई जगह से कोई संकेत रूप में दे देते हैं, लेकिन उसकी जानकारी ढूंढने पर मिल जाएगी अन्य पुराणों की कथा। और कुछ? ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री राधा राधिका रमण।